काल चक्र का रहस्य जो स्वयं शिव बाबा ने हमें बताई, उस विषय पर संबोधन करने के लिए हमारे मध्य गीता दीदी जी आए हैं। फिर से एक हाथ के ताली से आप गीता दीदी जी का स्वागत करेंगे। काल चक्र का रहस्य बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आपने आत्मा के बारे में सुना, परमात्मा के बारे में सुना, अभी आप बहुत ही विशेष सब्जेक्ट पर सुनेंगे जो स्वयं भगवान ने सृष्टि के आदि और अंत का रहस्य बताया है। कैसे सृष्टि की आदि हुई, कैसे अंत होगा, कैसे परिवर्तन आएगा, ये महापरिवर्तन किस तरह से आएगा, काल चक्र किस प्रकार से घूमता है, ये सारे विषयों पर आप इस सत्र में सुनेंगे। काल चक्र के विषय के ऊपर अनेक लोगों ने बहुत अध्ययन किया है। आज तक के अटकलें, अनुमान एवं प्रमाण सच्चाई से मीलों दूर है। सृष्टि की आदि कैसे हुई, अंत कैसे होगा, इस विषय पर हम सुनेंगे ही। लेकिन इस समय में सृष्टि चक्र में कौन सा ये विशेष समय चल रहा है जो हम अपने जीवन को वरदानों से भरपूर कर सकते हैं, क्योंकि काल चक्र का ज्ञान सभी चक्रों से जुड़ाने वाला ज्ञान है। ये अभी हम सुनेंगे इस विषय पर। इसलिए कहा जाता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त के कद्र कर हे बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो अभी हम सुनेंगे काल चक्र का रहस्य, जो स्वयं भगवान ने बताया है ब्रह्मा के मुखारविंद के द्वारा। हम सुनेंगे अभी आदरणीय गीता दीदी से। एक अनाउंसमेंट है, सभी बच्चे अपने क्लास के लिए लेफ्ट साइड जो 85 हॉल है वहाँ पर आप अपने क्लास के लिए जाएंगे। वहाँ पर आपको मैजिक शो और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आपके लिए रखे हैं। कृपया सभी बच्चे अपने क्लास के लिए 85 हॉल में पहुँचें।
ओम शांति। अभी के सत्र में बहुत सुंदर विषय पर हम समझने जा रहे हैं, जितना स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को पहचानना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है इस संसार के खेल को समझना। जिस दुनिया में हम रहते हैं, जहाँ ये सृष्टि का खेल चल रहा है वो क्या है, कैसे चलता है? कई कहते हैं ये दुनिया बनी ही नहीं है, स्वप्न मात्र है, कल्पना है। कोई समझते हैं कि संसार के आदिकाल से ही दैवी और आसुरी वृत्तियों के संघर्ष चलते ही रहे, सुख और दुख का खेल अनादिकाल से ही चल रहा है। संसार के इस खेल को न समझने के कारण मनुष्य अपने जीवन को भी नहीं समझ पाता है। कई परमात्मा पर नाराज हो जाते हैं कि आपने ऐसी कैसी दुनिया बनाई, क्यों बनाई? गीत भी गाते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाए, ऐसी क्यों दुनिया बनाए? तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से इस सृष्टि खेल के बारे में सत्य हमें बताया है। सृष्टि का खेल प्रकृति और पुरुष का बना हुआ खेल है। अब तक हम ये समझते रहे कि ये स्त्री और पुरुष का खेल है, नर और नारी से ये दुनिया बनती है, चलती है। परंतु अब आपको स्पष्ट है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम सभी चैतन्य शक्ति है, आत्मा है। आत्मा कभी स्त्री शरीर भी धारण करती है, कभी पुरुष शरीर भी धारण करती है। ऐसा नहीं है स्त्री शरीर धारण किया वो सदा ही स्त्री शरीर धारण करेंगे, ऐसा नहीं है। आत्मा स्त्री शरीर भी धारण करती है, कभी पुरुष शरीर भी धारण करती है। तो प्रकृति माना स्त्री की बात नहीं है, पुरुष माना भाइयों की बात नहीं है। प्रकृति माना क्या, पुरुष माना क्या? चित्र में देखिए, प्रकृति माना पांच तत्व, जिसे नेचर कहते हैं, कुदरत कहते हैं। प्रकृति के पांच तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ये पांचों ही तत्व अनादि अविनाशी हैं। ये जो दुनिया है वो पांच तत्वों से बनी है। संसार में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वैभव है, पदार्थ है, साधन है, प्रकृति के पांच तत्व से बनते हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति के पांच तत्वों से बना है। ये पांचों ही तत्व अनादि अविनाशी है, न उसकी उत्पत्ति होती है न इसका अंत होता है, इसलिए इसके लिए कहते हैं अनादि अविनाशी। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो केवल रूपांतरित होती रहती है। तो प्रकृति अनादि अविनाशी है। भल वैज्ञानिक, भूस्तर शास्त्री, खगोल शास्त्री संशोधन करते रहते हैं और हरेक अपने संशोधन के आधार पर अपनी बातें बताते हैं, परंतु फाइनल फैक्ट, फाइनल ट्रूथ कोई भी नहीं बता सकता है। उन्होंने जो भी परिणाम दिए हैं वो यही दिए हैं, लगभग, करीब, अबाउट ऐसा हुआ होगा। परमात्मा ने उसका आंसर यही दिया है कि ये अनादि अविनाशी है। और पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा, आत्मा भी अनादि अविनाशी है। इसलिए गीता में दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा हो, आत्मा के बारे में अनेक श्लोक है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, इसलिए आत्मा को अजर अमर कहा जाता है। आत्मा का शरीर धारण करना उसे जन्म कहते हैं, आत्मा का शरीर छोड़ देना उसे मृत्यु कहते हैं। गीता में ये श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, शस्त्र जिसे छेद नहीं सकते हैं, अग्नि जिसे जला नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकती, ऐसी आत्मा प्रकृति से अलग चैतन्य शक्ति है। अब आप देखिए, प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, आत्मा भी अनादि अविनाशी है, तो प्रकृति और पुरुष का बना हुआ यह खेल अनादि अविनाशी है। अब हम ये समझेंगे कि प्रकृति कैसे कार्य करती है, आत्मा कैसे कार्य करती है, और परमात्मा का इस संसार खेल में क्या कार्य है। स्थापना पालना विनाश का कार्य निरंतर चलता रहता है। गॉड शब्द को हम इस अर्थ में भी ले सकते हैं, जी मीन्स जनरेशन उत्पत्ति, ओ मीन्स ऑपरेशन संचालन पालना का कार्य, और डी मीन्स डिस्ट्रक्शन संहार का कार्य। परमात्मा के लिए कहते हैं कि वे स्थापना पालना विनाश का कार्य कराते हैं, इसलिए उसे करण करावन हार कहते हैं। तो प्रकृति स्थापना पालना विनाश का कार्य कैसे करती है, आत्मा पुरुष स्थापना पालना विनाश का कार्य कैसे करती है, और परमात्मा का रोल इस दुनिया में क्या है। तो प्रकृति स्वयं अपनी शक्ति से ही स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है। प्रकृति कैसे स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है, तो देखो जमीन में बीज गिरते हैं, आपने देखा होगा फल निकलते हैं वृक्ष में, वो पकते हैं, उसके बीज जमीन में गिरते हैं, हवा के द्वारा पंछियों के द्वारा वातावरण में भी फैलते हैं और जमीन पर पड़ते रहते हैं। तो ये जमीन पर बीज गिरना स्थापना का कार्य है। वही बीज प्रकृति के पांच तत्वों की पालना पाकर हवा पानी धूप खाद, ये पालना पाकर बीज अंकुरित होता है, ये स्थापना का पालना का कार्य हुआ। और वही प्रकृति जब तमो प्रधान बनती है, वो विनाश का भी कार्य करती है, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, अर्थक्वेक होते हैं, भूचाल कहते हैं, बाढ़ आती है, अकाल होते हैं, हवा के तूफान होते हैं, जिसके द्वारा प्रकृति विनाश का भी कार्य करती। अब ये जो स्थापना पालना विनाश का कार्य प्रकृति करती है, वो स्वयं की चेतना शक्ति से करती है, इसमें परमात्मा का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। विज्ञान के विकास के पहले तक काफी अंधश्रद्धा समाज में फैली हुई थी। लोग सूर्य को भगवान समझते हैं, चंद्र को देवता समझते हैं, लोग नदियों की पूजा करते हैं, पीपल की तुलसी की पूजा करते हैं। और इतने तक लोग मानते रहे कि भगवान ही सूर्य चमकाते हैं, भगवान ही बिजली चमकाते हैं, भगवान ही बरसात बरसाते हैं। और इसलिए वे यहाँ तक कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन अब जागृति हम सब में आ गई है, विज्ञान ने हमें काफी स्पष्ट बता दिया है कि वास्तव में सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, सितारे क्या है, कैसे बरसात बरसती है, कैसे हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, कैसे बिजली चमकती है, ये प्रकृति का अपना कार्य है, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं। जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, लोग परमात्मा के लिए कहते हैं कि भगवान नाराज हो गए हैं। परमात्मा कभी नाराज नहीं होता है, उसका कभी प्रकोप नहीं होता है। प्रकृति अगर परमात्मा की प्रेरणा से ही कार्य करती तो प्रकृति विनाश कैसे कर सकती है? परमात्मा तो सुख दाता है, दुख हरता है, कल्याणकारी है, रहम दिल है। परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति कार्य करती तो वो विनाशकारी नहीं हो सकती। तो वास्तव में प्रकृति स्वयं अपनी प्राकृतिक चेतना शक्ति से ये कार्य करती रहती है। अब हम मनुष्यात्माएं, मनुष्यात्मा स्थापना पालना विनाश का कार्य कैसे करता है? तो देखो, हम सोचते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो स्थापना का कार्य हुआ। उस प्लान को हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, उसे पालना का कार्य कहेंगे। और वही मनुष्य आत्मा जब विषय विकारों के वशीभूत पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा, मारामारी, खून, युद्ध के द्वारा विनाश का कार्य करते हैं। अब मनुष्य आत्मा जो कर्म करती है वो स्वयं के संस्कारों अनुसार कर्म करती है। ऐसा नहीं है कि हम जो मनुष्य आत्माएं कार्य करते हैं वो भगवान की इच्छा से करते हैं। जैसे कई बार हम गुस्से के वश, ईर्ष्या वैर द्वेष के बस कोई खराब कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हमें फिर अंदर से होता है। तो मैं ये बता रही थी कि कई बार हम कोई खराब कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर हमें अंदर से ही प्रेरणा आती है कि हमें ऐसा खराब नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए कई लोग ये मानते हैं कि अंदर बैठा हुआ भगवान हमें पाप न करने के लिए कहता है। परंतु आपने देखा होगा कि कई बार हम ऐसी अच्छी प्रेरणाओं को दबा कर भी गलत काम कर लेते हैं। तो क्या परमात्मा की प्रेरणा इतनी कमजोर है कि इंसान उसको भी दबा कर गलत काम कर ले? फिर तो परमात्मा की ऐसी कमजोर प्रेरणा का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर क्या इसका अर्थ तो यही हुआ कि अच्छा करने के जो विचार आते हैं वो परमात्मा के हैं और इंसान क्या बुरा ही सोचता रहता है। अगर हम गलत ही सोचते हैं तो गलत ही करते तो दुख ही पाते, पर हम अपने जीवन में सुख भी पाते हैं दुख भी पाते हैं। मीन्स हम अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अच्छा भी सोचते हैं बुरा भी सोचते हैं। इसलिए मनुष्य आत्मा अपने संस्कारों की प्रबलता अनुसार कर्म करता है। जब उसमें खराब संस्कार दृढ़ है तो वो गलत काम करता है, जब उसमें अच्छे संस्कार शक्तिशाली हैं तो कैसे भी वातावरण में रहते हुए भी वो अच्छा ही करेगा गलत नहीं करेगा। तो इस प्रकार मनुष्य आत्मा स्थापना पालना विनाश किए करती। अब सत्य ये है कि हम मनुष्य आत्माओं के विचार वाणी कर्म व्यवहार का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। प्रकृति पशु पंछी जगत हम मनुष्य आत्माओं को फॉलो करते हैं, इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ समस्त प्राणी जगत में मनुष्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है। हमारे मन वचन कर्म का प्रभाव प्रकृति पशु पंछी जगत पर पड़ता है। मैं कई उदाहरणों से ये बात आपको बताऊंगी। देखो हमारे देश में ही ये गायन है कि जब राम राज्य था तो शेर और गाय बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अर्थात हम मनुष्य आत्माएं जब देवता थे तो प्रकृति पशु पंछी जगत भी सतो प्रधान थे। हम मनुष्य आत्माएं जब पतित बनते हैं तो ये प्रकृति जगत भी पतित बनता है। हम अपने जीवन के नियम संयम मर्यादाएं तोड़ते हैं तो ये आउटसाइड नेचर प्रकृति पशु पंछी जगत भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं चलता है, वो भी उपद्रवी बन जाते हैं। जो आज हम देख रहे हैं दुनिया की हालत कि प्रकृति कितनी विषम बनती जा रही, ये भी हमारे पुराणों में उल्लेख है कि द्वापर युग के प्राचीन ऋषि मुनि घने जंगलों के बीच आश्रम गुरुकुल बनाकर रहते थे, तपस्या करते थे और उनकी तपस्या का पॉजिटिव प्रभाव इतना पड़ता था जो जंगल के हिंसक प्राणी शेर बाघ चीते जैसे हिंसक प्राणी भी आश्रम में पालतू प्राणी की तरह आकर बैठ जाते थे। जब हमारी विकारी वृत्तियों का शमन हो जाता है तो पशु पंछी प्रकृति जगत भी नियम में रहते हैं, वो भी सात्विक बन जाते हैं। ये एक काव्य हम स्कूल में पढ़ते थे, हमें आता था, गुजरात के कवि कलापी का नाम सुना होगा, उनका ये काव्य है जिसमें ये कहानी है कि एक राजा था, वो बहुत प्रजावत्सल था और सदा प्रजा की सुखाकारी का ध्यान रखता था। वो वेश बदलकर नगर चर्चा करने भी निकलता था। ऐसे ही एक बार वो अपना ड्रेस बदलकर एक किसान माता के खेत में जाता है और वो माता भी आए हुए मुसाफिर को देख गन्ना काटकर रस निकालकर पूरा ग्लास भरकर उनको गन्ने का रस पिलाती है। रस बहुत था, मीठा था। वो राजा जो मुसाफिर के रूप में था वो बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है कि मेरे राज्य में इतनी सुंदर फसल होती है। वहां से निकलते समय उसके मन में विचार आता है कि मेरे राज्य में इतनी अच्छी फसल होती है तो इसका फायदा राज्य कोष को भी होना चाहिए, तो वो उस पर टैक्स डालता है। अब एक दो साल के बाद वापस वो उसी माता के खेत में आता है। माता फिर गन्ना काटती है पर थोड़ा ही रस निकलता है और इतना मीठा नहीं होता है। तो वो राजा कहता है कि माता इतना ही रस क्यों निकला। तब वो ये वाक्य बोलती है कि दयाहीन हुआ नृप, रसहीन हुई धरा। माना जब से हमारा राजा दयाहीन हो गया तब से ये धरा धरती भी रसहीन हो गई। तो ये वाक्य भी बताता है कि हमारी वृत्ति प्रवृत्ति का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। और ये हमारे देश के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने भी ये सिद्ध करके बताया था कि अगर हम अपने पेड़ पौधों के आगे अच्छे सात्विक मधुर गीत संगीत बजाते हैं तो पौधों का विकास भी बहुत अच्छा होता है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की जो ग्राम विकास विंग है उसने भी योग का प्रयोग खेती पर भी किया है। हमारे गांवों में लगभग 11,000 से अधिक क्लासेस चलते हैं। वो जो हमारे किसान भाई बहने हैं जो खुद नियमित योग करते हैं उन्होंने खेती में भी योग का प्रयोग किया। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की हर प्रोसेस में वो योग का भी प्रयोग करते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि बहुत ही अच्छी फसल सात्विक अनाज फल फूल उग सकता है। और ये सिर्फ बात नहीं है, इस पर गुजरात गवर्नमेंट की दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और उत्तराखंड पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके वैज्ञानिकों ने इसमें रस लेकर पूरा साइंटिफिक डाटा निकाला है और उन्होंने साइंटिफिकली ये घोषित किया है कि राजयोग के प्रभाव से हम खेती भी अच्छी और सात्विक उगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं शाश्वत योगिक खेती और इसके इस पर पूरी सीरीज पीस ऑफ माइंड पर भी आती है। उसमें सारा बताया है कि कैसे खेती में योग का प्रयोग होता है। ये एक और यूरी गैलर नाम आपने सुना होगा। ये विदेश का भाई है जो अपने साइकिक थॉट पावर से चम्मच चाबियां बेंड कर देता है, चलती घड़ियों को रोक देता है। आदरणीय दादी जानकी जी और ये यूरी गैलर का लंदन के अल्बर्ट हॉल में ओपन सबके सामने प्रोग्राम हुआ था। उस समय यूरी गैलर ने सभा के बीच हाथ में अनाज के दाने लिए थे और थॉट पावर से, दृष्टि से, विचार शक्ति के द्वारा हाथ में ही बीज को अंकुरित करके दिखाया। तो ये है कि हमारे संकल्पों का, हमारे विचारों का प्रभाव भौतिक पदार्थ प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए हमारे देश में हमारे बुजुर्ग, हमारी संस्कृति सदा हमें सिखाती है कि भोजन करते समय मन सात्विक होना चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों का प्रभाव अन्न पर और अन्न द्वारा खाने वाले व्यक्ति के मन पर भी उसका प्रभाव जाता है। इसलिए बिजनेस के लक्ष्य से होटल में बनाया गया भोजन, माने प्यार से बनाया हुआ भोजन और परमात्मा की याद में बनाया गया प्रसाद है तो भोजन, पर कितना अंतर। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। तो हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। प्रकृति, पशु पंछी, हम मनुष्य आत्माओं को फॉलो करते हैं। इसलिए जब हम मनुष्य आत्माएं कलयुग के अंत समय पतित बन जाते हैं तो प्रकृति पशु पंछी जगत भी उपद्रवी बन जाता है, वो भी आपदाएं लाता है और विनाश करता है। अब जब प्रकृति और पुरुष, हम मनुष्य आत्माएं दोनों पतित बन जाते हैं तब सदा पावन परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हम मनुष्य आत्माओं को फिर से सत्य ज्ञान और योग सिखाकर हमें पावन बनाते हैं। हम मनुष्य आत्माएं पावन बनेंगे हमारी पवित्रता के बल से, फिर से विश्व पावन बनेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम मनुष्य आत्माओं का इस संसार खेल में बहुत जिम्मेवारी भरा रोल है। हम बिगड़ते हैं तो ये खेल बिगड़ जाता है, हम सुधरते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं तो संसार भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो इस प्रकार सृष्टि का ये चक्र अनादि अविनाशी रूप से चलता ही रहता है। चित्र में आप देखिए, प्रकृति जगत के और छोटे छोटे चक्र बताए हैं जो अनादि अविनाशी रूप से चलते ही रहते हैं, जैसे दिन और रात का चक्र, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अविरत गति से ये दिन रात का चक्र चलता ही रहता है। कितनी भी घोर अंधेरी अमावस की रात्रि हो, परंतु सुबह होती ही है। इस प्रकार मौसम का साइकिल है, गर्मी पड़ती है, फिर बारिश होती है, फिर सर्दी हो जाती है, फिर वापस गर्मी, वर्षा, सर्दी का ये साइकिल है। लाइफ एंड डेथ का साइकिल है, जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु का भी ये साइकिल है। इवन आपने देखा होगा बरसात का साइकिल, वो भी साइक्लिकल गति से होता रहता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर वो बादल बरसते हैं, नदी झरने बहते हैं और फिर वो वापस समुद्र में जाकर मिलते हैं। तो जैसे प्रकृति जगत के ये छोटे छोटे चक्र है जो अनादि अविनाशी रूप से चलते हैं, ऐसे द होल वर्ल्ड साइकिल, ये पूरा सृष्टि खेल का चक्र भी अनादि अविनाशी रूप से चलता ही रहता है। ये कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। उसका जवाब यही है कि ये अनादि अविनाशी है। इसलिए बचपन में आपको भी याद होगा, प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते थे, बच्चे आपस में पूछते थे, बताओ अंडा पहले या मुर्गी पहले, फल पहले या वृक्ष पहले। ये साइकिल है, चक्र है। इसलिए कहते हैं हर चक्र की अपनी आयु है, टाइम लिमिट है। दिन रात का चक्र 24 घंटे का है, उसके बाद वो रिपीट होता है। सप्ताह का चक्र 7 दिन का है, फिर वापस वही संडे मंडे ट्यूसडे। इसलिए कहते हैं ना भाई, जीवन तो 7 दिन का है, क्योंकि प्रति 7 दिन ये रिपीट होता है। वर्ष का साइकिल 12 मास का है, 12 मास के बाद फिर वापस जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जैसे हर साइकिल की अपनी समय अवधि है, टाइम लिमिट है, ऐसे पूरा संसार का खेल 5000 वर्ष का है। प्रति 5000 वर्ष ये वापस रिपीट होता है। इसलिए कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप पुनरावृत्त होता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। जो बना बनाया है संसार का खेल, वो ही बन रहा है, नया कुछ भी नहीं है। नथिंग इज न्यू। हम नहीं जानते हैं इसलिए हमें नया लगता है, वरना ये संसार का खेल 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। और ये गीता शास्त्र में भी लिखा है, अर्जुन को कहा जाता है कि हे अर्जुन, तुम, हम और ये राजाएं पहले भी थे, अभी भी हैं, और इस संसार चक्र का ऐसा कोई काल नहीं जो तुम, हम और ये ना हो, क्योंकि हम आत्माएं अनादि अविनाशी, प्रकृति अनादि अविनाशी, इसका बना खेल भी अनादि अविनाशी है। और ज्योतिष विज्ञान से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती। देखो, लोग अक्सर ज्योतिषी के पास जाते हैं, कईयों की तो आदत है रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कौन सी कॉलम पढ़ते हैं? राशिफल पढ़ते हैं। जहां तहां ज्योतिषियों के पास जाते रहते हैं, अपने हाथ की रेखाएं बताते हैं, जन्म पत्री बताते हैं कि देखो मेरे नसीब में क्या लिखा है, और ज्योतिषी अपने ज्ञान अनुसार बताते हैं कि भाई आपके लिए ये लिखा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि जरूर ये घटनाएं पूर्व निश्चित है, तब तो ज्योतिष बताते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर ये घटनाएं पूर्व निश्चित ना हो तो ज्योतिष विज्ञान भी नहीं हो सकता है। ये छोटे मोटे ज्योतिष है इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें बताते हैं। परमात्मा नॉलेजफुल है, बेहद का ज्योतिष है, इसलिए पूरे संसार खेल के लिए वो बताते हैं कि पूरा खेल ही अनादि अविनाशी है। चित्र में आप देखिए, सृष्टि खेल की तुलना स्वस्तिक के साथ की। स्वस्तिक का चिन्ह देखा है आपने? देखा है हर शुभ कार्य में स्वस्तिक का चिन्ह हम निकालते हैं, पर हमें पता नहीं है कि ये चिन्ह हम क्यों निकालते हैं। हम तो सब निकालते हैं इसलिए निकालते हैं, पर ये स्वस्तिक का चिन्ह क्यों निकालते हैं? वास्तव में ये स्वस्तिक सृष्टि चक्र का प्रतीक है। स्वस्तिक को आप देखो साइक्लिकल ऑर्डर में बताते हैं, उसके चार सरीखे भाग करते हैं, तो ये सृष्टि चक्र का प्रतीक है कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, उसमें चार युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों ही युगों की आयु समान है 1250 वर्ष। हरेक साइकिल आप देखिए, प्रकृति जगत का हरेक साइकिल चार स्टेज से गुजरता है। जैसे लाइफ एंड डेथ का साइकिल आप देखिए, बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ये चार स्टेज से गुजरता है। मौसम का साइकिल आप देखिए, गर्मी, वर्षा, सर्दी, पतझड़, बसंत बहार आती है, प्रकृति पूरी खिल जाती, फिर गर्मी, सर्दी, फिर पतझड़, और पतझड़ के बाद फिर से बसंत। डे एंड नाइट का साइकिल देखिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो ऐसे ही संसार का खेल भी चार स्टेज से गुजरता है। इसके प्रारंभ के 1200 वर्ष सतयुग कहा जाता है, जब हम आत्माएं और प्रकृति सत्य है, पवित्र है, तो उस समय को सतयुग कहा जाता है, जहां प्रकृति और पुरुष दोनों सत्य हैं, पवित्र है, दिव्य है। उस समय के संसार को सतयुग कहा जाता है, जिसे हम स्वर्ग कहते, वैकुंठ कहते। भारत ही स्वर्ग था, ये संसार ही स्वर्ग था। ऐसा नहीं है स्वर्ग आसमान में है, नर्क पाताल में है। देवताएं आकाश में रहते हैं, असुर पाताल में रहते हैं, ऐसे नहीं है। हम मनुष्य आत्माएं ही देवता थे। जब हम पवित्रता और दैवी गुण गंवा देते हैं तो हम सामान्य मनुष्य बन जाते हैं, और जब हम पतित बन जाते हैं, विकारों, व्यसनों, अवगुणों के वशीभूत हो जाते हैं, तो हम मनुष्य आत्माएं ही असुर बन जाते हैं। असुर कोई अलग भयानक, कोई अलग योनि के प्राणी नहीं। देखो, हम मनुष्य आत्माएं जब गुस्सा करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, वैर और द्वेष में आते हैं, उस समय अपना चेहरा आईने में देखा है कभी? हाँ, देखा है। उस समय हम कैसे लगते हैं? हम ही असुर बन जाते हैं। इसलिए संसार, हम मनुष्य आत्माएं जब देवता थे तो विश्व स्वर्ग था, जिसे वैकुंठ कहते हैं, सतयुग कहते हैं। और हर धर्म इस बात को स्वीकार करता। मुस्लिम भाई बहने कहते हैं जन्नत बहिष्ट, क्रिश्चियन भाई बहने कहते हैं संसार पहले पैराडाइज था, हेविन था। सिख भाई बहने कहते हैं ये दुनिया पहले सचखंड थी, सुखधाम था। तो चक्र में आप देखिए, सतयुग में स्वस्तिक का हाथ राइट साइड दिखाया है, जो शुभ की निशानी। सतयुग वो समय है जब संसार में शुभ ही शुभ था, सत्य ही सत्य था, सुख ही सुख था। परंतु आप जानते हैं, गीता सार में भी बताते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर वस्तु, हर आत्मा समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर परिवर्तन को प्राप्त होती रहती है। हम पैदा हुए शरीर से बच्चे थे। अब कोई सोचे कि बच्चा ही रहूं, युवा बनना ही नहीं है, होगा? ये क्रम है, ये क्रम है कि बच्चा युवा बनेगा, प्रौढ़ होगा, वृद्ध होगा, शरीर खत्म हो जाएगा। तो परिवर्तन के इस नियम अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। चित्र में आप देखिए, वहां स्वस्तिक का हाथ राइट साइड से नीचे जा रहा है, वहां हम रैतीय सही है, वहां भी हम सत्य हैं, वहां भी शुभ है, सुख है, पवित्रता है, परंतु उसकी परसेंटेज डाउन होती है, परसेंटेज कम होती है। सतयुग स्वर्ग है तो त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। कोई चीज बिल्कुल नई है और 5 दिन भी आप यूज करें तो फर्क पड़ जाएगा हा? उसकी न्यूनेस में, उनकी चमक दमक में अंतर आ जाएगा। चीज बिगड़ी नहीं है, खराब नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, परंतु उनकी चमक दमक कम हो जाती है। तो सतयुग स्वर्ग है, त्रेतायुग सेमी स्वर्ग है। इसलिए सतयुग को गोल्डन एज के रूप में बताया है और त्रेतायुग को सिल्वर एज कहा जाता है। तो दो युग 2500 वर्ष समग्र विश्व में सुख शांति समृद्धि पवित्रता होती, वहां कोई दुख शांति नहीं, पाप नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, युद्ध नहीं, कोई असुर नहीं, वहां पवित्रता सत्यता और दिव्यता का राज्य है। अब दो युग के बाद द्वापर युग से हम वाम मार्ग में जाते हैं, विकारों के मार्ग पर जाते हैं, उल्टे मार्ग पर जाते हैं। इसलिए द्वापर युग में स्वस्तिक का हाथ लेफ्ट साइड बताया है जो अशुभ की निशानी, क्योंकि द्वापर युग से हम अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर भान में आते हैं, विषय विकार उत्पन्न होते हैं, अपवित्रता जीवन में आती है, दुख अशांति की शुरुआत होती है। इसलिए द्वापर युग कॉपर एज बताया है और लेफ्ट साइड अशुभ की निशानी है कि द्वापर से उतरती कला होती है, आत्माएं वाम मार्ग में जाती हैं। और कलयुग में आप देखिए स्वस्तिक का हाथ लेफ्ट साइड से ऊपर बताया है, माना जहां अशुभ की अति होती है वहां हम बिल्कुल पति समोप्रधान बन जाते हैं। इसलिए कलयुग को आयरन एज बताया है। इस प्रकार सृष्टि का खेल सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये 4 स्टेज से गुजरता है। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, चित्र में इस विश्व घड़ी के 2 कांटे बताए हैं और उस 2 कांटे के बीच संगम युग लिखा है। अभी जो समय चल रहा है इस वर्ल्ड साइकिल में वो है कलयुग का अंत, सतयुग आदि का संधि काल। जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय है, क्योंकि पूरा साइकिल चेंज होता है। परिवर्तन तो संसार चक्र में होता ही रहता है, मास वर्ष दशक शतक बदलते हैं, पर युग बदलते हैं, पर अभी जो समय है कलयुग अंत और सतयुग आदि का समय, पूरा कल्प बदलता है, 5000 वर्ष का पूरा साइकिल चेंज होता है। इसलिए अभी जो समय चल रहा है उसे अति महत्वपूर्ण मूल्यवान समय कहेंगे। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय, जब स्वयं परम पुरुष परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, हमें सत्य ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। हम कलियुगी नर नारी को संगम युगी पवित्र योगी बनाते हैं। यही पवित्र योगी आत्माएं आने वाले सतयुग की दुनिया के लायक बनेंगे, देवी देवता बनेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय है। स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को पतित से पावन, भोगी से योगी बनाने आए हैं। जो आत्माएं इस परिवर्तन की वेला के समय परमात्मा के आदेश को सिर माथे रख अपने इस जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, वे ही आने वाली सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे। इसलिए आप सबको यहां बुलाकर हमें यही प्रभु संदेश देना है कि अभी जो समय चल रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय चल रहा है। इसलिए समय को पहचानते हुए सावधान होना है, अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। ये समय है आत्मा का परमात्मा से मिलन करने का, ये समय है अपनी करणी को इतना श्रेष्ठ बनाने का, जो कहा जाता है कि नर ऐसी करणी करे तो वो श्री नारायण बन सकता है, नारी ऐसी करणी करे वो श्री लक्ष्मी बन सकती है। ये वो ही ईश्वरीय ज्ञान है जो मनुष्य से देवता हमें बनाता है। तो कौन बनना चाहेगा? कौन नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना कौन चाहेंगे? देखो, एक दो को देखकर हाथ नहीं उठाना है और जिगरी दिल से हाथ उठाना है, बड़ी ताकत से उठाओ, ढीला ढीला नहीं, कहीं इतना उठा रहे हैं। हाँ, वही ताली बजाओ, इतने सब लक्ष्मी नारायण बनने तैयार। सिर्फ मंदिर में जाकर देवी देवताओं के सिर्फ दर्शन नहीं करने हैं, ये समय है स्वयं देवता बनने का। हमें खुद ऐसा पवित्र दिव्य बनना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी ही, अभी नहीं तो कभी नहीं। बरोबर जोर से बोलो ताकि याद रहे सदा। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि परमात्मा केवल कलियुग अंत, सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में ही सृष्टि पर आते। ध्यान से सुनिए, परमात्मा हर युग में नहीं आते हैं, हर युग में परमात्मा आते तो आज कलियुग क्यों होता? आज कलियुग क्यों होता? हाँ, परमात्मा आकर फिर सतयुग बना देते ना, फिर परमात्मा ने आकर क्या किया? इसलिए परमात्मा हर युग में नहीं आते हैं, परमात्मा हर कलयुग के अंत, हर 5000 वर्ष के अंत संगम युग में सृष्टि पर आते हैं और हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाते हैं। और परमात्मा से ऊपर और कोई आत्मा नहीं है जो दूसरे युग में आकर हमें पावन बनाए, इसलिए अभी ही बन सकते हैं, अभी नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। तो अब आपको स्पष्ट है कि परमात्मा का ये संदेश है, आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। परंतु परमात्मा को न जानने के कारण और ये संदेश सुनाने के लिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां निमित्त बनते हैं, तो लोग हमारे लिए मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां सबको घर बार छुड़ा देती हैं, ब्रह्मा कुमारियां सफेद कपड़े पहनवा देती हैं। कईयों ने आपको कहा होगा वहां नहीं जाओ, वहां जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। ये लोगों को भ्रांतियां रहती हैं, वास्तव में ये परमात्मा का आदेश है, हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं, इसलिए हम निमित्त बनते हैं संदेश देने के लिए। आप अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे तो आप भी दूसरों को कहेंगे, पर ये कहने वाला स्वयं परमात्मा है। इसलिए आध्यात्मिकता कोई यूनिफॉर्म नहीं है जो हम सबको पहना दे, आध्यात्मिकता हर आत्मा अपनी समझ और अपनी शक्ति से ही जीवन में धारण कर सकते। अगर हमारे कहने से लोग पवित्र बन जाते हो तो हम इतनी मेहनत क्यों करते, हम इतनी मेहनत क्यों करते सबके पीछे? पर ये हमारी शक्ति नहीं है, ये शिव बाबा की शक्ति है, शिव बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल देती है। इसलिए कहते हैं परमात्मा के लिए कि बिगड़ी को बनाने वाला। जब कलयुग के अंत में हम सबकी जीवन बिगड़ जाती है तो परमात्मा आकर फिर से श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये सृष्टि का चक्र बहुत ही वंडरफुल है, हम आत्माएं इसकी तुलना हम एक फिल्म नाटक के साथ भी कर सकते हैं कि ये सृष्टि रंगमंच है, सूर्य चांद सितारे इसकी रोशनी है, हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स है। शरीर रूपी ड्रेस हम पहनकर रोज नित्य अनेक प्रकार के रोल प्ले करते हैं, पर इस वर्ल्ड ड्रामा में शरीर रूपी ड्रेस पहनकर अलग अलग पार्ट बजाते बजाते हमने एक भूल ये कर दी कि हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल गए और जो ड्रेस हमने पहनी हम उससे ही अपने आप को शरीर समझने लगे। जो रोल हम प्ले करते हैं हमने खुद को ही वो समझ लिया। मान लो एक फिल्म में एक एक्टर राजा का रोल प्ले करता है, परंतु फिल्म के बाद भी घर में जाकर समाज के बीच वो अपने आप को राजा ही समझने लगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग उसको कहेंगे ना कि भाई तुम फिल्म में राजा हो, यहाँ राजा नहीं, यहाँ तो तुम मिस्टर फलाना हो। तो हमने इस वर्ल्ड ड्रामा में ये भूल की कि जो रोल हमें मिला है किसी के लिए आप माता है, दूसरे के आगे आप बेटी है, दूसरे के आगे बहन है, और के आगे पत्नी है, ऑफिस में आप बॉस है, समाज में आप नागरिक है, ये आपके रोल्स है। आपकी सच्ची पहचान ये है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल गए, इसलिए जीवन में संसार में गड़बड़ होने लगी। दूसरी दो भूल हमने इस वर्ल्ड ड्रामा में कौन सी की? अब आप बताइए, हर एक एक्टर का काम है अपने रोल पर ध्यान देना, अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना कि वे उसे जो रोल मिला है वो बेस्ट प्ले करने का वो प्रयास करें। अब दूसरे एक्टर जो साथ में हैं वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक करते हैं, गलत करते हैं, ये देखने का काम किसका है? किसका है? डायरेक्टर का है ना, डायरेक्टर का है। एक्टर का काम खुद के रोल पर ध्यान देना है, पर दूसरे एक्टर क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये देखना डायरेक्टर का काम है ना? पर आज हम क्या कर रहे हैं? खुद के कर्म पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि इनके घर में ऐसा चलता है, इनकी बहू ऐसी है, इनके घर में ऐसा है, हम दूसरों पर देखने लगे हैं। अब जो खुद के कर्म पर ध्यान ना दे और दूसरे के बारे में सोचता रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा? उनके अपनी एक्शन बिगड़ जाएगी। मान लो तीन डांसर हैं, तीनों डांस कर रही है, पर एक डांसर खुद के ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी को देखती है कि इसका ताल मिलता है कि नहीं, इनका ताल मिलता है का नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा? उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा। तो हमारा जीवन क्यों बिगड़ गया? क्यों बिगड़ गए? समझ गए ना? दूसरों को दोषित नहीं करना है। हमारा जीवन क्यों बिगड़ गया? क्योंकि खुद पर ध्यान देने के बजाय दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, इसलिए हमारा जीवन बिगड़ गया। अब हम मनुष्य आत्माओं का जीवन बिगड़ेगा तो पूरा संसार ही बिगड़ जाएगा। और दूसरी भूल कौन सी? मान लो एक दृश्य में चार एक्टर हैं, चारों को हर एक को अपना अपना रोल मिला है। एक को कहा है कि भाई इस समय तुम्हें रोना है, दूसरे एक्टर को कहा उसी समय तुमको हंसना है, तीसरे एक्टर को कहा तुम्हें चुप रहकर देखना है, और चौथे को कहा कि तुम्हें सलाह देनी है। तो चारों ही एक्टर क्या करेंगे? अपना अपना रोल प्ले करेंगे ना। पर अगर वो चारों ही एक्टर खुद का रोल प्ले करने के बजाय एक को रोता देख दूसरा रोने लगे, तीसरा भी रोने लगे, चौथा भी रोने लगे, तो क्या होगा? हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। तो आज हम जीवन में क्या करते, दूसरों को देखते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं कि इसने गुस्सा किया ना, तब मैंने भी गुस्सा किया, उसने क्यों बोला, उसने दो बोला तब मैंने चार बोला। सब भ्रष्टाचार करते हैं, हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। हम दूसरों को फॉलो करने लगे, इसलिए संसार का खेल बिगड़ गया है। अब चूंकि सृष्टि खेल का ये चक्र पूरा हो रहा है, डायरेक्टर शिव बाबा आए हैं, वे फिर से हमें अपना सत्य परिचय दे रहे हैं और हमें कैसे एक्शन करना है, हर कर्म कैसे करना है, वो ज्ञान दे रहे हैं। तो आज के इस सत्र का सार यही है कि अब ये चक्र पूरा हो रहा है, नाटक पूरा होता है, दूसरा शो शुरू हो उससे पहले क्या करते हैं एक्टर? नाटक पूरा हो जाता है, एक्टर ऑडियंस सब वापस जाते हैं। अब ये नाटक पूरा हो रहा है, हम आत्माओं को वापस घर जाना है। कहाँ जाना है, कौन सा घर? याद है ना बरोबर? हाँ, ऐसे तो नहीं दिल्ली तमिलनाडु याद आ गया। हाँ, अब हमें वापस अपने असली घर जाना है। अब जब एक्टर स्टेज पर नाटक पूरा कर वापस घर जाता है तो क्या करता है? नाटक की ड्रेस पहन के ही जाएगा या चेंज करके जाएगा? हाँ, चेंज करेगा ना, अपनी नॉर्मल जो ड्रेस है वो पहन के जाएगा ना। तो हम आत्माओं को भी शरीर यहाँ ही छोड़कर अपनी ओरिजिनल शुद्ध पवित्र आत्मा स्थिति धारण कर वापस घर जाना है। जाना है हाँ, कि यही अच्छा है? कलयुग में पसंद है क्या? जाना है ना, क्योंकि नाटक अब पूरा हो रहा है। अब नाटक पूरा होने के बाद कोई जाए नहीं, हॉल में खड़ा रहे तो उसको क्या कहेंगे? भाई जाओ, अब पूरा हो गया। तो अब ये नाटक पूरा हो रहा है, शरीर रूपी ड्रेस उतारना है और पवित्र बनकर वापस जाना है। अब वापस जाने के लिए दो ऑप्शन है, अब आप कौन सा चुनेंगे? परमात्मा कहते हैं या तो योग बल से पवित्र बनकर वापस घर जाओ, और अगर हम योग से पावन नहीं बनेंगे तो कर्मों की सजा खाकर भी पावन बनना होगा और बाद में ही घर जा सकेंगे। तो कौन सा पसंद है, डंडे खाना है या योग बल से पावन बनना है? हाँ, योग बल से बनना है ना, भगवान बहुत प्यार से हाँ हमें पावन बना रहा है, देवता बना रहा है। अब जो समय के पहले भगवान के कहने पर पवित्र बनकर जाएंगे वो विथ रिस्पेक्ट परमात्मा के साथ घर जाएंगे, जो समय के पहले नहीं जागेंगे, परमात्मा का नहीं मानेंगे, तो अपने किए का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा ना। इसलिए याद रखना है कि अब घर जाना है। हाँ, तो जहाँ जाना है उसे याद करना है, जिसके साथ जाना है उस शिव बाबा को याद करना है। तो वो शिव बाबा का जो संदेश है, हम फिर से ध्यान से सुनेंगे गीत के माध्यम से, और फिर से अपना संकल्प पक्का कर लेंगे कि हमें अपने बाकी रहे हुए इस जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। फिर से एक बार हाथ ऊपर करेंगे, बाबा को बताएंगे कि हाँ, हम अपना जीवन पवित्र दिव्य श्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। कई सोचते हैं कि हम हाथ उठाएं और फिर नहीं हुआ तो करके हाथ नहीं उठाते हैं, पर भगवान सजा नहीं करता है। जितना आप करेंगे उतना आप ही पाएंगे, इसमें कोई भगवान की बात नहीं है। वो किसी को सजा नहीं करता है। मैं 5% करूंगी तो मुझे 5% मिलेगा, तो नुकसान नहीं है। यहाँ दृढ़ता करेंगे तो आपको याद रहेगा और आत्मा में शक्ति आएगी। तो हम बहुत सुंदर गीत सुनेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा को मन ही मन अपना दृढ़ संकल्प सुनाएंगे कि मैं अपने जीवन को आपकी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनाऊंगी, सतयुग की स्थापना में मददगार बनूंगी। ओम शांति। पहले योग कर लेते हैं, फिर आप आइए।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान है यहाँ महान।